ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का हमारा विषय बहुत ही सुंदर है, अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त वातावरण। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है, मैन इज नॉट मियरली क्रिएटर बट क्रिएटर ऑफ हिज एनवायरनमेंट, अर्थात मनुष्य वातावरण के अधीन नहीं है लेकिन वातावरण का रचयिता है। वो जिस प्रकार के संकल्प उत्पन्न करता है चारों ओर का वातावरण उसी प्रकार का बन जाता है। तो जितना जितना हम अव्यक्त स्थिति में टिकते हैं, अव्यक्त अनुभूतियां करते हैं, उतना उतना वातावरण अव्यक्त बनता है, शक्तिशाली बनता है, अट्रैक्टिव बनता है, समाधान स्वरूप बनता है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जैसे भारत सरकार उग्रवादियों आतंकवादियों को रोकने के लिए देश के चारों ओर करंट वाली बाड़ लगा देती है, और आजकल तो बहुत सारे किसान भी आवारा पशुओं से खेत को बचाने के लिए खेतों के चारों ओर भी करंट वाली बाड़ लगा देते हैं। तो बाबा ने कहा था ऐसे ही ये जो अव्यक्त स्थिति है ये भी एक प्रकार की करंट वाली बाढ़ है, जिसमें कोई भी पार्श्विक संस्कारों वाली वृत्ति और कोई भी आतंकवादी उग्रवादी जैसा संस्कार अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अर्थात अव्यक्त स्थिति जहां है वो एक सुरक्षित जोन है जिसमें कोई विघ्न प्रवेश नहीं कर सकता, जहां समाधान ही समाधान है, जहां आनंद ही आनंद है। प्यारे बाबा ने 69 की एक मुरली में बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। कई बच्चे कहते हैं बाबा हम नौकरी पेशा या घर में भी रहते हैं तो वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर आ जाता है। तो उसमें बाबा ने कहा कि ऊंचे से ऊंचे सर्वशक्तिवान के बच्चे मालिक अधिकारी और वो वातावरण के अधीन हो जाएं, ये तो शोभा ही नहीं देता है। वातावरण आपके अधीन है, आप उसके रचयिता हैं, वो आपकी रचना है, आप अपनी रचना को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। और इसके लिए बाबा ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया अगरबत्ती का। बाबा ने कहा मान लीजिए कूड़े का बहुत बड़ा ढेर है, बहुत बदबू आ रही है, तो क्या करेंगे? एक छोटी सी अगरबत्ती जला देंगे। बाबा ने कहा अगरबत्ती कितनी छोटी है और कूड़ा कितना अधिक है, लेकिन वो छोटी सी अगरबत्ती इतनी शक्तिशाली है कि बदबू को खत्म कर देती है, उसकी खुशबू फैल जाती है, वातावरण सुगंधित हो जाता है, आसपास के लोग चैन की सांस लेते हैं। तो एक छोटी सी अगरबत्ती में अगर इतनी शक्ति हो सकती है तो क्या सर्वशक्तिवान के बच्चों में, डायरेक्ट पालना लेने वाले बच्चों में, डायरेक्ट अडॉप्टेड बच्चों में इतनी ताकत नहीं हो सकती कि वो अपनी मनसा शक्ति के द्वारा, मनसा शुद्धि के द्वारा वातावरण को बदल सके, वातावरण को अपने अनुकूल बना सके? तो बाबा ने कहा बच्चों में ये ताकत है, लेकिन इस ताकत को समय पर यूज करना है। प्यारे बाबा ने जब देह त्याग किया उससे कुछ समय पहले की जो बाबा की स्थिति भाई बहन बताते हैं, तो वो जैसे साकार में रहते भी बाबा अव्यक्त थे। बाबा की भ्रकुटी में आत्मा रूपी ज्योति जगमगाती, सबको स्पष्ट दिखाई देती थी और बाबा बहुत कम बोलते थे। बहुत बड़ी बात को भी एक छोटा सा उत्तर दे करके समाप्त कर देते थे और बाबा जिधर से भी गुजरते थे तो जैसे एक अव्यक्त प्रवाह हर एक बच्चे को अनुभव होता था और बाबा को देख करके ही बच्चों की भी अव्यक्त स्थिति बन जाती थी। जिन बच्चों ने उन लास्ट के दिनों में बाबा का स्पर्श किया, बाबा का हाथ पकड़ा, तो उन बच्चों को भी ऐसे ही लगा कि जैसे बाबा का हाथ कॉटन का है, रुई का है, इतना मुलायम। अर्थात देह अभिमान रूपी हड्डियां बिल्कुल गल गई और जैसे चलते फिरते भी बाबा फरिश्ता स्थिति में बच्चों को नजर आए। तो जैसे बाबा की अंतिम स्थिति थी, बाबा चाहते हैं कि बच्चों की भी ऐसी ही स्थिति बने, क्योंकि प्रत्यक्षता का आधार यही स्थिति है और दुनिया का वायुमंडल जो एकदम किचड़े जैसा है, जो एकदम नकारात्मक है, जो एकदम भ्रष्टाचार, पापाचार, अनाचार, दुराचार से आकंठ डूबा हुआ है, तो ऐसे वातावरण को बाबा ने एक मुरली में कहा था, कैसे बदलोगे, क्या ज्ञान सुनाओगे? वातावरण तो ज्ञान नहीं सुनता ना। वातावरण का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसमें दो शब्द हैं, वात माना वायु और आवरण माना उसके ऊपर चढ़ा हुआ एक आवरण। तो चारों ओर की जो वायु है उसके ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ है वो बड़ा नकारात्मक है। उस नकारात्मक वातावरण को अपनी अव्यक्त ऊंची स्थिति के द्वारा पवित्र बना देना, ये हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। तो बाबा हम बच्चों से भी यही सेवा चाहते हैं और उसके लिए बाबा ने कहा कि अंतर्मुखी होकर के अपने आप की चेकिंग करनी है कि कोई ऐसा संस्कार तो नहीं है जो हम अव्यक्त स्थिति की तरफ बढ़ते हैं और वो हमें पीछे खींच लेता है। जैसे पंछी के पांव में अगर रस्सी बंधी हो और वो उड़ना चाहे तो उड़ नहीं सकता, इसी प्रकार से अगर किसी भी प्रकार की पुरानी आदत, व्यर्थ की आदत, व्यर्थ सोचने की आदत, व्यर्थ बातें करने की आदत, बार बार व्यर्थ के दृश्य इमर्ज करने की आदत होगी तो ये उड़ने नहीं देगी, अव्यक्त स्थिति का आनंद लेने नहीं देगी। बाबा के अव्यक्त होने के बाद 13 दिन लगातार भोग लगता रहा और दादी गुलजार जी के माध्यम से संदेश बाबा देते रहे, तो उन्हीं में से एक संदेश में बाबा ने एक बहुत ही स्व चेकिंग की पावरफुल बात कही है। बाबा ने एक दृश्य दिखाया कि तीन प्रकार के फूल है, एक लोहे का फूल है, एक पीतल का फूल है और एक रियल गुलाब का फूल है। तो बाबा ने कहा कि जैसे ये फूल तीन अलग अलग प्रकार के हैं, ऐसे मेरे बच्चों में भी तीन प्रकार के बच्चे हैं। फूल तो तीनों ही हैं, लेकिन कुछ बच्चे इस लोहे के फूल जैसे हैं। तो बाबा ने कहा लोहे की क्वालिटी क्या होती है आप सब जानते हैं ना, लोहा बहुत सख्त होता है, लोहे को मोड़ने में बहुत मेहनत लगती है, ढालने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है और बहुत ही ठोक पीट के बाद वो आकार ग्रहण करता है। तो बाबा ने कहा कुछ बच्चे इस लोहे के फूल जैसे हैं, जिनके संस्कारों को आकार देने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ढलते ही नहीं है, मुड़ते ही नहीं है और परिश्रम लेते हैं बाबा का। और बाबा ने कहा दूसरे बाबा के बच्चे इस पीतल के फूल जैसे हैं, जो मेहनत तो लेते हैं लेकिन लोहे जितनी नहीं, थोड़ी मेहनत से आकार को ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात थोड़े से पुरुषार्थ, थोड़ी सी गाइडेंस के बाद अपने पुराने संस्कारों का परित्याग कर देते हैं और आत्मा अपने मूल ओरिजिनल निराकारी स्वरूप में सहज टिक जाती है। और फिर बाबा ने कहा कि तीसरी प्रकार के जो बाबा के बच्चे हैं वो इस रियल गुलाब के फूल जैसे हैं। और इतना कह करके बाबा ने उस गुलाब के फूल को हथेली पे रख के और जरा सा घुमाया तो उसकी जितनी भी पत्तियां थी वो फूल से अलग हो गई और अंदर का जो बीज था वो जैसे दिखाई देने लगा। तो बाबा ने कहा जो रियल गुलाब है वो बच्चे बिना मेहनत के तुरंत अपनी बीज रूप स्थिति बना लेते हैं, जैसे इस गुलाब के फूल के पत्ते एकदम अलग हो गए, तो ऐसे वो बच्चे भी देह के संबंध और देह के जो जन्म जन्म के पुराने संस्कार हैं, स्मृतियां हैं, भाव स्वभाव हैं, आदतें, उनसे बस इस गुलाब के फूल की तरह से झट न्यारे हो जाते हैं और झट अपनी बीज रूप स्थिति में टिक जाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को बार बार स्मृति में लाना है कि मैं बीज रूप आत्मा हूँ और ओरिजिनल रूप में मुक्त आत्मा हूँ, स्वतंत्र आत्मा हूँ, सर्व बंधनों से न्यारी, निरसंकल, निर्विकार, निराधार, निर्भार, ऐसी मैं बीज रूप आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा जितनी जितनी ये स्मृति पक्की होती जाती है कि अब मुझे बीज बनकर सुप्रीम बीज के संग में रहना है, तो ये जो देह का विस्तार है ये अपने आप अलग हो जाता है। बाबा ने कहा देह के विस्तार को तो जानते हो ना, देह के धर्मों का विस्तार, देह से जो भक्ति की उसका विस्तार, रिश्तों का विस्तार, फिर एक एक कर्मेंद्री के आकर्षण का विस्तार। तो बाबा ने कहा जैसे ही बीज रूप बनते हो ये सारे विस्तार सिमट जाते हैं, तो शक्तिशाली वातावरण बनाने के लिए ऐसी शक्तिशाली स्थिति चाहिए। बीज में बहुत शक्ति होती है और जब वही बीज बो दिया जाता है तो उसकी शक्ति बिल्कुल नष्ट हो जाती है क्योंकि विस्तार हो जाता है। तो बाबा ने कहा 84 जन्म आप विस्तार में लगे थे, ये एक जन्म समेटने का है, इसमें सब कुछ समेट डालो। और उसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया, हमारे चारों ओर जो हम देखते हैं, बाबा ने कहा मकड़ी अपने मुख से ही जाला निकालती है और फिर वापस उस जाले को खुद ही अपने में ले लेती है। तो इतने जन्म आपने ये देह है, देह के संबंधों का विस्तार रूपी जाला बनाया और अब इसे समेट करके बीज रूप स्थिति में टिक जाओ। कल हमने जो 18 जनवरी की मुरली सुनी उसके वरदान की जो लास्ट दो लाइनें थी वो एक प्रकार से हम सबके लिए बड़ा सुंदर होमवर्क था। सार रूप में दो लाइनों में जैसे कि पुरुषार्थ का सारा सार समाया हुआ था। पहली लाइन थी, बाबा ने कहा याद के अनुभवों में डूब करके सेवा करो, याद के अनुभवों में डूब करके सेवा करो। हम सब सेवा तो करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब सेवा करते हैं तो याद के अनुभव एक तरफ हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा दोनों को एक करो, याद और सेवा अलग अलग नहीं, याद के अनुभवों में डूब करके सेवा करो। और दूसरा बाबा ने कहा याद के अनुभवों की रेस करो, रेस तो करनी है लेकिन याद की अनुभूतियों की रेस करनी है। मुझे कितनी सुंदर सुंदर अनुभूतियां हो रही हैं, मैं उन्हें बढ़ाऊं और किसी को सुनाऊं तो अपनी याद की अनुभूतियां सुनाऊं, इसकी रेस करनी है। जैसे दुनिया में तो लोग भौतिक चीजों की रेस करते हैं, उसके पास बढ़िया गाड़ी है तो मेरे पास उससे भी बढ़िया हो, इसके पास जितना बढ़िया कपड़ा है मेरे पास उससे भी बढ़िया हो, इसके पास जितनी बड़ी डिग्री है मेरे पास उससे भी बड़ी डिग्री हो, और ये जितना जोर से बोलता है मैं उससे भी जोर से बोलूं, अगर ये एक बात बोलता है तो मैं चार बातें बोलूं। दुनिया में इस प्रकार की रेस है, लेकिन बाबा के बच्चों की हर बात निराली है। तो बाबा ने बच्चों को कौन सी रेस सिखाई, याद के अनुभवों की रेस करो। तो किसी बच्चे ने बाबा से पूछा कि बाबा कई बार याद में तो बैठते हैं लेकिन अनुभव नहीं होते हैं, जैसे बैठे थे वैसे ही उठ जाते हैं। तब बाबा ने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया, बाबा ने कहा अरे बच्चे भक्ति मार्ग की मीरा को देखो, मीरा केवल संकल्प करती थी और साक्षात्कार नहीं साक्षात अपने इष्ट को देखती थी, वो तो भक्ति मार्ग की थी और आप तो डायरेक्ट ज्ञान सागर के बच्ची हो। और बाबा का वायदा है कि जब भी जिस भी रूप में बच्चे बाप को अपने सामने बुलाना चाहें, जिस भी रूप में प्रकट करना चाहें, हजूर हाजिर होने के लिए बंधायमान है। तो बाबा ने कहा जब वो मीरा साक्षात अनुभव कर सकती है तो आप डायरेक्ट अडॉप्टेड बच्चे क्या साक्षात अनुभव नहीं कर सकते? बाबा ने कहा करके देखो, बाबा साकार जैसा अनुभव कराएंगे। और फिर बाबा ने ये अनुभव करने की विधि सुनाई। बाबा ने कहा कि जब साकार में बाप दादा से मिलने का समय होता था तो बच्चों को नींद नहीं आती थी, और बाबा के मिलने के समय से पहले ही बुद्धि योग द्वारा उस मिलन का अनुभव करते ही रहते थे। तो बाबा ने कहा, अब भी आप बुद्धि योग के द्वारा बाप दादा से साकार जैसे मिलन का अनुभव कर सकते हो। बाबा ने कहा, इसके लिए मन ही मन दृढ़ संकल्प करो कि मुझे बाप दादा से मिलन मनाना है, रूरिहान करनी है, बाप दादा से ऐसी मिलन मनाना है जैसे वो मेरे आसपास है, मेरे सामने है, साकार की तरह से मुझे माता पिता भाई बंधु साजन पुत्र मित्र सब रिश्तों का प्यार दे रही हैं। और बाबा ने कहा, खास अमृत वेले इस अनुभव में बैठोगे तो बाबा आपको ऐसे ही अनुभव कराएगा जैसे संदेशियां अव्यक्त वतन में जाती हैं और सामने बाबा को देखती हैं। बाबा ने कहा, संदेशियों का जो अनुभव है वो तो दिव्य दृष्टि का अनुभव है, लेकिन बाबा आपको दिव्य बुद्धि द्वारा इतने अच्छे अनुभव कराएगा और इतने अच्छे अच्छे रहस्य खोलेगा, ज्ञान के नए नए राज बताएगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। ये सब बाबा करेगा, लेकिन इसके लिए बाबा ने एक बहुत छोटी सी शर्त बताई। बाबा ने कहा, अमृत वेले ऐसी स्थिति का अनुभव उन्हीं बच्चों को होगा जो सारा दिन अपनी अव्यक्त स्थिति बना करके रखेंगे। जो व्यक्त भाव है वो एक प्रकार से अव्यक्त अनुभूतियों के बीच में पर्दे का काम करता है। अगर हम व्यक्त भाव में आते हैं तो जैसे पर्दा डल जाता है, और जो हम देखना चाहते हैं बाप दादा को, जो सुनना चाहते हैं, जो उनका प्यार पाना चाहते हैं, तो वो पर्दे की ओट में चला जाता है। तो बाबा ने कहा, ये पर्दा बीच में ना आए। व्यक्त भाव का अर्थ क्या है? व्यक्त भाव का अर्थ है शरीर व्यक्त है, तो शरीर के भान में आना, इंद्रियों की आकर्षण में आना, आंख ने जो देखा, कान ने जो सुना,
भाई।
ओम शांति। तो अव्यक्त स्थिति अर्थात देह में रहते भी जैसे इंद्रियां निष्क्रिय हैं, इंद्रियां हैं तो सही लेकिन वो यूज नहीं हो रही हैं, एक तरह से वर्क में नहीं आ रही हैं, क्रियाशील नहीं है। तो क्रियाशील कौन है? मन और बुद्धि क्रियाशील है। मन चिंतन कर रहा है और बुद्धि दृश्य देख रही है, ये दोनों सक्रिय हैं। तो बुद्धि क्या दृश्य देख रही है? इस पांच तत्वों के जगत से पार के दृश्य देख रही है, बाप दादा के वतन के दृश्य देख रही है, बाप दादा के संग के अनुभव कर रही है। कान है लेकिन भीतर के कान बाप दादा की आवाज सुन रही है, आंखें हैं पर निष्क्रिय हैं, भीतर की आंखें बाबा के रूप रस का पान कर रही है। तो चलते फिरते जितनी आवश्यकता है उतना शरीर को यूज किया और उसके बाद फिर अपनी अव्यक्त स्थिति में टिक गए। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कि एक बार एक पिता और पुत्र दोनों ही दुकान में काम करते थे। तो पिता तो बड़ा क्रोधी था लेकिन पुत्र बहुत ही सरल स्वभाव का, बहुत ही नम्र और बहुत ही शांत प्रवृत्ति का था, बहुत काम भी करता था, आज्ञाकारी भी था, पिता की इज्जत भी बहुत करता था। रोज सुबह उठ करके पिता के चरण स्पर्श करता था लेकिन चूंकि पिता क्रोधी था तो दिन भर दुकान में बच्चे को कई बार डांट लगा देता था। कभी कहता था ये सामान इधर क्यों रखा, उधर रख, कभी कहता था जल्दी जल्दी हाथ चला, कभी कहता था देख कितने ग्राहक इकट्ठे हो गए इनको जल्दी से निपटा, कभी कहता था ये सामान क्यों खत्म हो गया। तो ऐसे कई बार जोर से बोल देता था, थोड़ा कटु भी बोल देता था और बच्चा शांत रहता था, नाराज नहीं होता था पिता से। तो किसी ने पूछा आज के जमाने में भाई इतनी सहनशीलता तो होती नहीं है, देखने में आता है कि यूथ को तो गुस्सा बहुत जल्दी आता है और तुम इतने सहनशील हो, सारा दिन पिताजी की बातें सुन के सहन कर लेते। उसने कहा हाँ मैं सब कुछ सहन करता हूँ क्योंकि मैंने अपने जीवन में एक नियम धारण किया है और मैं उस नियम को तोड़ना नहीं चाहता, और अगर मेरी सहनशीलता खत्म हो गई तो वो नियम टूट जाएगा। उसने कहा मैंने ये नियम बना रखा है कि मैं सुबह उठते सबसे पहले अपने पिता के चरण स्पर्श करता हूँ और ये काम तभी हो सकता है जब उनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा हो, रिस्पेक्ट हो। अगर दिन भर में उनकी किसी भी बात पे मुझे क्रोध आ गया, मैं नेगेटिव हो गया तो मैं अपना ये नियम निभा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं सब बातों को सुन के भूल जाता हूँ, लेट गो कर देता हूँ और उनके प्रति अपना प्यार बनाए रखता हूँ। तो देखिए एक बच्चा अपने लौकिक बाप के प्रति एक नियम निभाने के लिए दिन भर की कितनी बातों को इग्नोर करता है, कितनी बातों को लेट गो करता है। उसकी आंखों के सामने बस एक ही बात रहती है कि मुझे सुबह उठ के चरण स्पर्श करने हैं और आशीर्वाद लेना है। तो ऐसे ही दिन भर में काम करते हुए अगर हमको भी स्मृति रहे कि अमृत वेले मुझे मेरे प्यारे बाबा से वरदान लेने हैं, सुंदर सुंदर अनुभूतियां करनी हैं, आत्मा को बलवान बनाना है, आत्मा के पुराने संस्कार जलाने हैं और लाइट माइट हाउस बन करके इस दुनिया को लाइट और माइट देनी है। अगर दिन भर इसी पे फोकस रहे तो भले ही हम काम करेंगे, भले हम लोगों की ऐसी वैसी आवाजें सुनेंगे, भले ही परिस्थितियां ऊपर नीचे होंगी लेकिन हमारा फोकस एक ही बात पर है। तो बाबा ने कहा जो बच्चे दिन भर ऐसा केंद्रित होके रहेंगे लक्ष्य पे, उन्हें अमृत वेले बाबा लाइट माइट की अनुभूति कराएंगे। देखते हैं कि जब हम देह अभिमान में कोई संकल्प पैदा करते हैं तो वो संकल्प बहुत ही कमजोर संकल्प होता है। जगदीश भाई ने एक बार एक सुंदर बात कही थी कि जैसे गोली होती है, एक खिलौना गोली होती है, उसको आप चलाओ तो वो एक मीटर दूरी तक ही जाएगी, इससे ज्यादा नहीं। दूसरी एक मीडियम गोली होती है, चलाओगे तो चलो 50 मीटर दूरी तक चली जाएगी, लेकिन एक जो बढ़िया उत्तम क्वालिटी की गोली है उसको आप चलाओगे तो वो 500 मीटर तक, 1000 मीटर तक भी चली जाएगी, निशाना लगा करके आपके लक्ष्य को पूरा करेगी। तो देवान के जो संकल्प होते हैं वो तो खिलौना गोली जैसे होते, हद के संकल्प होते, यही बिखरे होते। लेकिन जब हम अव्यक्त स्थिति में टिक करके संकल्प करते हैं तो वो उस पावरफुल गोली की तरह से होते हैं जो निशाने को साधती ही साधती है। अर्थात उस स्थिति में टिक्के हम जो संकल्प करते हैं, विश्व कल्याण के संकल्प करते हैं, बाबा ने कहा क्या आत्माओं की चित्कार सुनाई नहीं देती, इतनी दुख में आत्माएं पुकार रही हैं, अपने इष्ट को ढूंढ रही हैं, कहां कहां किस किस प्रकार की आश लगाए बैठी हैं, कोई अवतरित हो, कोई आए, कोई हमारी आवाज सुने, कोई ऐसा निस्वार्थ हो, क्योंकि उनके चारों ओर जो लोग हैं वो तो स्वार्थियों का झुंड है, न कोई सुनता है न कोई समाधान देता है, तो वो किसी पारलौकिक सत्ता की तरफ आश लगा के बैठे हैं। तो बाबा ने कहा वो पारलौकिक सत्ताएं आप ही तो हो, और ये कार्य आपको ही तो करना है। तो जब हम देह से अलग होकर के उस लाइट माइट स्टेज में बैठते, उस ज्ञान सूर्य की स्टेज में बैठते, तो एक सूर्य इतनी दूर होते हुए भी पूरी धरती को कितना गर्म कर देता है, गर्मियों में कैसे तपती है धरती। तो बाबा ने कहा जो जड़ सूर्य में इतनी ताकत है तो आप चैतन्य सूर्य के सामने वो जड़ सूर्य तो कुछ भी नहीं है। उस जड़ सूर्य को आप कहो कि तुम तो जड़ हो, तुम्हारी ताकत तो जड़ है, लेकिन मैं तो चैतन्य हूँ और मेरी शक्ति में तो चैतन्यता है, और इस चैतन्यता के बल से मैं तो कुछ भी परिवर्तन कर सकता हूँ। तो ऐसी अनुभूति हम करें कि जैसे ऊंचे से ऊंचे स्टेज पे मैं सूर्य चमक रहा हूँ, ज्ञान सूर्य के साथ साथ, और मेरी किरणें संपूर्ण विश्व के कण कण में जैसे बल भर रही हैं, प्रकृति के पांचों तत्वों को बल प्रदान कर रही हैं, ग्रहों को, नक्षत्रों को, जड़ को, चेतन को। तो बाबा ने कहा इसकी तैयारी दिन भर चाहिए। बच्चे पूछते हैं ना, बाबा अमृत वेला शक्तिशाली कैसे बने? तो बाबा ने कहा अमृत वेले की शुरुआत अमृत वेले नहीं होती, उसकी शुरुआत तो पिछले दिन की दिनचर्या से होती है। फिर बाबा ने कहा कि जब बच्चे याद में बैठते हैं तो अव्यक्त हो जाते हैं, लेकिन जब कार्य व्यवहार में आते हैं तो कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। एक होता है सोल कॉन्शियस, एक होता है कर्म कॉन्शियस। तो सोल कॉन्शियस होगा उसका तो चिंतन चलेगा कि मैं आत्मा करावनहार और इंद्रियां करणहार, मैं भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठ के साक्षी होके देख रही हूँ, मैंने ऑर्डर दे दिया, और नौकर अपना काम कर रहे हैं। अच्छा मालिक वही होता है जो नौकरों को साक्षी होके देखे। अगर वो नौकरों के बीच में मिक्स हो जाए तो नौकर उसकी कदर ही नहीं करते। नौकर कहेंगे ये भी हमारे जैसा है। तो इंद्रियों को काम तो हम देते हैं लेकिन उनके बीच में इन्वॉल्व हो जाते। तो इंद्रियां कहना मानती नहीं। तो बाबा ने कहा प्रजापति बन करके बैठो। प्रजापति अर्थात सब इंद्रियां प्रजा है और मैं इंद्रियों रूपी प्रजा का पति हूं। इनको काम में लगा दिया और अब मैं अपना सकाश देने का काम कर रहा हूं। नहीं तो अक्सर होता क्या है कि हाथों को काम में लगा दिया। ये तो स्थूल इंद्रियां हैं लेकिन सूक्ष्म में जो तीन इंद्रियां हैं मन बुद्धि संस्कार, उसमें से मन और संस्कार ये सबसे अधिक चंचल है। तो ये भाग जाते हैं। हाथ तो काम में लगे हुए और आत्मा ढूंढती है मन कहाँ है, वो तो वहां है ही नहीं। संस्कारों के वश भाग गए। तो स्थूल इंद्रियां तो काम में लग गई लेकिन सूक्ष्म इंद्रियां। तो बाबा ने कहा प्रजापति बन करके बैठो अर्थात स्थूल और सूक्ष्म दोनों नियंत्रण में हो और उसमें भी बार बार ये देखो कि मेरे मंत्री और उपमंत्री मेरे नियंत्रण में हैं। इंद्रियां इशारों से चल रही हैं, इंद्रियां जी हजूर और जी हाजिर कर रही हैं। तो इसके लिए प्रजा पति बन करके अर्थात त्रिकुटी सिंहासन पे बैठ करके आत्मा अपना काम करे, इंद्रियां अपना काम करें। जैसे मातेश्वरी जगदम्बा के जीवन की एक घटना सुनाते हैं कि एक बार वो अनाज साफ कर रही थी। यज्ञ में जब बाबा और मम्मा थे तो बाबा मम्मा किसी को बुलाते नहीं थे कि आओ बच्चे ये सेवा करें, खुद ही लग जाते थे। तो मम्मा ने देखा कि अनाज साफ करने की सेवा है तो वो अकेले ही लग गई। किसी बच्चे ने देख लिया तो उसने बाकी सब बच्चों को कहा अरे अरे मम्मा मम्मा अनाज साफ करने बैठी है, चलो चलो। तो देखते ही देखते सारे बच्चे इकट्ठे हो गए। तो एक बच्चे ने कहा कि मम्मा आप क्यों साफ कर रही हैं, आप छोड़ दीजिए हम करेंगे। और जैसे मम्मा के हाथ से वो थाली लेने लगा तो मम्मा ने कहा मैं कहाँ कर रही हूँ। तो कहा मम्मा आप अनाज ही तो साफ कर रही हो। तो अव्यक्त स्थिति का एक सुंदर एग्जाम्पल मम्मा ने रखा। कर्म करते हुए अव्यक्त स्थिति का मम्मा ने कहा कि अनाज साफ तो मेरे नौकर कर रहे हैं, मैं तो बाप दादा के साथ प्यार के अनुभवों में लीन हूं। तो कर्म करते हुए भी मन भागे नहीं लेकिन बाबा के प्यार के अनुभवों में लीन रहे। तो मन बुद्धि एक तरफ अपना काम कर रही है और इंद्रियां दूसरी तरफ अपना काम कर रही, लेकिन इसके लिए लंबे समय का अभ्यास चाहिए और घड़ी घड़ी अभ्यास चाहिए। जैसे कोई किसान होता है खेत में पानी देता है तो घड़ी घड़ी देखता है कि पानी ठीक जगह जा रहा है या नाली टूट गई और झाड़ झंखाड़ में तो नहीं जा रहा, ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे ही कोई भी काम करते हैं तो बार बार देखना पड़ता है। तो ऐसे ही बार बार ध्यान देना पड़े मन अब तुम कहाँ हो, किधर गए, क्यों गए, और मन को शक्तिशाली ऑर्डर देना है कि यही दृश्य देखो। हम गाते तो हैं तुमसे हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, लेकिन इस मन को बार बार सिखाओ कि जो सबसे हसीन है उसी को देखना है, और उस हसीन को छोड़ करके जो कुरूप है वो कुछ भी नहीं देखना है। जैसे अपन इस साकार दुनिया में गाड़ी चलाते हैं और कहीं पे लिखा हुआ होता है नो पार्किंग, तो गाड़ी को अपन वहां खड़ी नहीं कर सकते। तो ऐसे ही मन और बुद्धि को हमने दिशा दी, मन और बुद्धि ने यात्रा शुरू की, तो इस साकार दुनिया में सब जगह नो पार्किंग लिख दो। अब तुमको साकार दुनिया में कहीं भी पार्किंग नहीं करनी है, विमान को सीधा ऊपर लेकर के जाओ और वहीं पे खड़ा करना, और जितनी देर ये स्थूल कर्म चलेगा तब तक वहीं पे खड़े रखना है। तो मन और बुद्धि को या तो सूक्ष्म वतन में खड़ा कर दो या परम धाम में, सूक्ष्म वतन में आकारी रूप में बाप दादा को सर्व संबंधों में देखो, बाप दादा की प्रकृति से निकलती हुई पवित्रता की शक्तिशाली किरणों को अपने में भरो, क्योंकि प्योरिटी इज ब्यूटी, ब्यूटी इज प्योरिटी। जहाँ पवित्रता है वहीं सुंदरता है, जहाँ सुंदरता है वहीं पवित्रता है। और या वतन में जाकर के उस सबसे हसीन बाबा के रूप को देखो, क्योंकि ट्रुथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रुथ। जो सत्य है वही सुंदर है, और जो सुंदर है वही सत्य है। तो उस सुंदर रूप वाले प्रियतम के रूप का रसपान करो, और आत्मा उस रूप के रसपान में इतनी मशगूल हो जाए, इस रूप के सिवाय मुझे और कोई रूप देखना ही नहीं, इसके आगे सब भद्दे हैं, सब काले हैं, सब नश्वर हैं, ये एक ही रूप अविनाशी है, परम सुंदर है, परम आकर्षक है। इसके आगे सब सुंदरताएं पानी भरती हैं। तो आत्मा उस रूप को देखने में ऐसी डूब जाए, जैसे भक्ति मार्ग में मीरा को कृष्ण का रूप ही आकर्षित करता था, छवि उसके हृदय में बसी रहती थी। तो ऐसे ही वो छवि, वो रूप, वो निराकार स्वरूप, वो बेदाग स्वरूप, वो परम कल्याणकारी गुणों का भंडार दिल में, मन में, चित्त में, उसी के साथ रूह रिहान, उसी के साथ बातचीत, उसी के साथ दिल की लेन देन, मन बुद्धि उसी में लगे रहें और हाथ काम करते रहें, शरीर भले चलने का काम करता रहे लेकिन मन बुद्धि ऊपर रहे। तो इसको बाबा ने कहा शरीर व्यक्त में, शरीर फर्श पे और मन अर्श पे। और ये ऐसी स्थिति है जो पूरी तरह से मुक्त स्थिति है। बाबा ने कहा पहले आप मुक्त बनेंगे तब दूसरों को मुक्ति धाम में प्रवेश करा सकेंगे, अर्थात मुक्ति धाम का द्वार खोल सकेंगे। तो पहले हम ऐसे मुक्त बने। मन को खींचने वाली सब डोरियां हमने काट डाली, इस भौतिक जगत का कोई आकर्षण नीचे हमें खींच नहीं सकता। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो चंद्रमा पे जाते हैं तो जैसे ही उड़ान भरते हैं धरती का आकर्षण कम होते जाता है, और जब ऊपर पहुंचते हैं तो एकदम अपने को हल्का महसूस करते हैं। बाबा ने कहा ऐसे ही आप भी जब अव्यक्त वतन के लिए उड़ान भरते हो तो एकदम हल्कापन महसूस करते हो, बंधन मुक्त हो जाते हो, स्वतंत्र हो जाते हो, लाइट माइट बन जाते हो, बाबा ने कहा उनकी है साइंस पावर और आपकी है साइलेंस पावर। फिर बाबा ने कहा दोनों में एक अंतर और है, वो जब ऊपर जाते हैं तो नीचे आने का जो कनेक्शन होता है वो नीचे वालों के हाथ में होता है, लेकिन बाबा ने कहा आप किसी नीचे वाले से बंधे हुए नहीं हो, आप तो मालिक हो। आप ऊपर जाते हो तो कोई नीचे वाला आपको नीचे खींच ले, ऐसा नहीं है। आप मालिक हो, जितनी देर ऊपर रहना चाहो उतनी देर रह सकते हो। तो बाबा ने कहा मालिक बनकर स्वतंत्र बनकर सब रस्सियां काट कर बार बार अर्श की स्थिति का अनुभव करो। अरे बच्चे फर्श पे तो 63 जन्म रहे और उससे पहले भी फर्श पे ही थे, भले देवी देवता रूप में थे लेकिन थे तो धरती पे ही। ऐसी अव्यक्त स्थिति अनुभव करने का समय, अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने का समय केवल अभी मिलता है। तो बाबा ने कहा बच्चे 5000 साल में एक बार ये सुंदर स्थिति बनाने का मौका मिलता है, तो 20 नाखून का जोर लगाकर दृढ़ संकल्प करके अव्यक्त स्थिति बनाओ और दुनिया के वायुमंडल को पवित्र बनाओ। ओम शांति।